हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से शादी का मौसम चल रहा है, इसलिए यहाँ का मौसम थोड़ा ढीला है। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें अर्जुन ने जो जो तर्क सुनाए प्रथम अध्याय में, उन तर्कों के निवारण के लिए अब श्री भगवान बोलना शुरू किए हैं। पिछला श्लोक हमने लिया कौन सा था? क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वी उपपद्यते। भगवान अर्जुन को कुछ कठोर शब्दों में अर्जुन को जागृत कर रहे हैं बोलकर। क्लैब्यम का अर्थ है अर्जुन, इस कायरता को, इस नपुंसकता को छोड़ो और उत्तिष्ठ, जागृत, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तुम परंतप हो और तुम जागृत हो, जो तुम्हारा नाम है उस नाम की पूर्ति करो तुम। और आज जो हम श्लोक लेंगे, चौथा श्लोक, अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन की स्थिति, अर्जुन ने अब तक जो तर्क प्रस्तुत किए, और अब पिछले श्लोक में अर्जुन जो भगवान के मुख से जो कठोर शब्द सुने, तो यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा होगा। अर्जुन ने यह सोचा पहले कि मेरे तर्क सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण वो शायद मान जाएंगे, इतने अच्छे तर्क मैंने प्रस्तुत किए, कितने सारे तर्क धर्मशास्त्र को संबोधित करते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण सोचेंगे कि अर्जुन तुम्हें इतना ज्ञान कैसे हुआ और तुम इतनी इतने सुंदर धर्म की बातें कैसे बोल रहे हो। तो अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण मानो बोले, चलो फिर चलो रथ पीछे करते हैं, चलो चलते हैं वापस घर। नहीं, यहां पर भगवान, श्री भगवान वाच क्लैब्यम अर्जुन को नपुंसक कहते हुए उठा रहे हैं तुरंत। और भगवान ने कुछ सोचा नहीं कि एक एक तर्क लेकर अब उन तर्कों का निवारण भगवान करेंगे। भगवान ने सीधा कह दिया कि छोड़ो ये सब, हृदय की दुर्बलता, खड़े हो, चलो बस इतना ही। भगवान ने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि अब और 17 अध्याय सुनाने हैं। भगवान तो मानो इमरजेंसी सिचुएशन था, आपातकालीन स्थिति थी कि शंख बज चुके हैं, बुगल बज चुके हैं और दोनों सेना आमने सामने, अब सभी प्रतीक्षा में हैं। तो भगवान सीधा अर्जुन से, मानो जो पिछला श्लोक हमने लिया, भगवान का यह मनोभाव था अर्जुन को कहते हुए कि अरे देखो सब लोग तैयार है भाई, तुम ये सब जो तुम बातें बोल रहे हो ये बाद में हम डिस्कस करते हैं, अभी युद्ध शुरू करो, इसलिए खड़े हो, उत्तिष्ठ। अब अर्जुन के मन में तो इतना भारी एक संकोच कि कैसे युद्ध किया जाए। तो अर्जुन अब तुरंत ये श्लोक बोल रहे हैं, बहुत ही ये सोच विचार कर अर्जुन ने श्लोक बोला है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। यहां पर काफी चेयर खाली हैं, यदि किसी को यहां से चेयर लेनी है। बहुत सोच विचार कर अर्जुन ने अब ये श्लोक कहा है, इसमें भी अर्जुन एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन अपने तर्क छोड़े नहीं है। इतने कठोर शब्द सुनने के पश्चात अर्जुन वो अपने मत को छोड़े नहीं है। कौन सा मत? युद्ध नहीं करना। वो भी है कृष्ण के ही भक्त, तो वो भी नहीं छोड़ रहे। और अच्छा अर्जुन नहीं छोड़े, नहीं तो हमको कहां सुनने मिलती गीता पूरी। तो यहां पर अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन। यहां पर अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान को मधुसूदन बुला रहे हैं और कौन सा? अरिसूदन। अरे सूदन नहीं, अरिसूदन। तो मधुसूदन और अरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये, कि कैसे मैं भीष्म, बाकियों को तो छोड़ दीजिए कृष्ण, कैसे मैं भीष्म और द्रोण इन दो व्यक्तियों, केवल इन दो व्यक्तियों को देखिए हे मधुसूदन, कैसे मैं भीष्म और द्रोण जैसे मेरे पूजनीय पूजनीय गुरुजन, पूजारा जो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं भीष्म और द्रोण, कैसे उनके ऊपर मैं इशु भी बाण चलाऊं। अरे जो पूजनीय हैं उन पर तो फूल बरसाए जाते हैं, बाण, क्या बाण बरसाए जाते हैं जो पूजनीय होते हैं? तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कि ये जो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं, विशेष रूप से ये दो केवल इस श्लोक, और बहुत सोच विचार कर अर्जुन ने केवल इन दो महाजनों के बारे में कहा। तो श्लोक के कुछ आज के महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे इस प्रकार के रहेंगे। अर्जुन का प्रबल तर्क, पूजनीय एवं निंदनीय कौन है, और अर्जुन ने जो मधुसूदन एवं अरिसूदन भगवान को उल्लेख किया है, तो इसके पीछे क्या कारण है। अर्जुन का ये जो एक तर्क है, प्रथम अध्याय के सारे तर्कों से सबसे प्रबल, प्रबलता वाला तर्क है आज के श्लोक वाला तर्क। अब हमें लग रहा होगा कि प्रथम अध्याय में तो अर्जुन ने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए कि सारे धर्म पर आधारित, धर्म शास्त्र पर आधारित कैसे कोई उन्हें नकार सकता है। भगवान तो खैर, हालांकि सारे धर्म भगवान से ही उद्भूत हुए हैं, तो भगवान क्यों नहीं कुछ कर सकते। परंतु यहां पर व्यक्तिगत रूप से अब अर्जुन ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मन में एक विचार उत्पन्न करने के लिए कहे हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसलिए यदि यह देखा जाए कि अर्जुन का यह प्रबल तर्क क्या, प्रथम अध्याय में अर्जुन ने तर्कों, अर्जुन के तर्कों को भगवान ने कूड़ा करकट बोला। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक था जिसमें भगवान कूड़ा करकट बोले अर्जुन के सारे तर्कों को? कुतस्त्वा कश्मलमिदम, भूल गए आप लोग? भगवान कहे कुतस्त्वा, कहां से ये कूड़ा करकट आया तुम्हारे मन में अर्जुन? सोचिए अर्जुन इतना सजा सजा कर एक एक तर्क प्रस्तुत रख रहे थे और भगवान उसे बोले कूड़ा करकट, ये सारे जो कलमश तुम्हारे हृदय के, ये कहां से आए अर्जुन? मैं तुम्हारे बगल में, मैं तुम्हारा रथ हांक रहा हूं, जीवन भर हम एक साथ रहे, खाए पिए सोए उठे बैठे, ये कहां से कूड़ा करकट तुम्हारे मन में आ रहा है? तो पूरा प्रथम अध्याय भगवान ने मानो उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया अर्जुन के तर्कों को। तो अर्जुन बहुत हिल गए कि ये ऐसे कैसे इसको कूड़ा करकट बोल रहे हैं। इसलिए फिर अर्जुन ने सोचा कि मैं कोई ऐसा तर्क प्रस्तुत करूं जो कि इन्हें अंदर से हिला दे, किन्हें? स्वयं भगवान को, स्वयं भगवान को अंदर से जो हिला दे, ऐसा कुछ तर्क मुझे प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो यहां पर तो मुझे कोई आशा नहीं लगती, ये लड़ना ही होगा युद्ध यदि ये जो मेरे सारथी हैं, क्योंकि यही मेरा रथ पीछे ले जाएंगे वापस घर पर। तो इसलिए ये जो तर्क अर्जुन प्रस्तुत किए इस श्लोक में, जिसमें अर्जुन का ये मनोभाव सिर्फ भीष्म एवं द्रोण पर भगवान का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अर्जुन का तो ध्यान था ही इन दोनों के ऊपर, अब भगवान का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कहते हैं कि ये पूजनीय किसके लिए? केवल मेरे लिए नहीं, भगवान आपके लिए भी। अर्जुन अपने लिए नहीं कह रहे कि केवल मेरे लिए पूजनीय है, केवल मेरे गुरुजन है, वो भगवान से कह रहे हैं हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, ये दोनों विशेष रूप से भीष्म और द्रोण ये आपके लिए पूजनीय है। ये इसलिए क्योंकि जब भी भगवान हस्तिनापुर आते तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को भगवान अपना दंडवत नमस्कार करते, पूजनीय, भगवान इन्हें अपना पूजनीय मानते थे। एक बार भगवान हस्तिनापुर आए तो भगवान ने भीष्म पितामह को दंडवत किया। तो भीष्म पितामह, अब वो तो जानते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो भीष्म पितामह भगवान से पूछते हैं कि ये कौन से गणित के नियम के अनुसार मैं आपका पूजनीय हो गया, ये कौन सा गणित का नियम है? तो भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, एक तो आयु, आयु में आप मुझसे बड़े हैं और ज्ञान में आप मुझसे बड़े हैं। यदि श्रीमद् भागवत में आप पढ़ो तो श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मराज हैं, युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं कर पाए, भीष्म पितामह कर पाए। यहां पर देखिए, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई युद्ध के पहले, और युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज शोक किए। युद्ध के पहले अर्जुन शोक कर रहे हैं, युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज शोक किए जब उन्होंने सारे सैनिकों को मरा हुआ देखा, तो युधिष्ठिर महाराज रोने लगे और युधिष्ठिर महाराज रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये सब मारे गए ताकि मैं राजा बन सकूं, क्यों क्यों ऐसा हुआ? केवल मुझे राजा बनने के लिए इन सब को मरना पड़ा, 64 करोड़ सैनिकों को। तो उस समय जब युधिष्ठिर महाराज शोक में चले गए, शोक संविग्न जो हमने एक श्लोक अर्जुन के संदर्भ में लिया था, अब युधिष्ठिर महाराज शोक संविग्न, तो भगवान सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है दोनों भाइयों को, पहले एक युद्ध के पहले शोक में चला गया, अब युद्ध के बाद शोक में जा रहा है और मुझे शोक दे रहे हैं दोनों। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को कुछ सांत्वना देने के लिए, 18 दिन पहले ही गीता सुनाई थी तो थोड़ा गीता फ्रेश थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के वचनों से भी संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि इसके पीछे एक और कारण है कि भगवान जानबूझकर युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को और सभियों को भगवान ले जाना चाहते थे भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं वहां। और भीष्म पितामह ने जो अलग अलग प्रकार की नीतियां, भीष्म नीतियां जो युधिष्ठिर महाराज को सिखाई, सोचिए बाणों की शैया पर लेटे हुए, कोई हमें यदि क्लास देने कहे उस स्थिति में बाणों की शैया, कितने बाण थे पता है भीष्म पितामह के शरीर में, कि एक उंगली भी दो बाणों के बीच में न जा सके, इतने बाण भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने धसाए थे। और उन बाणों की शैया के ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए, सारे बाण आर पार हुए और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को राजनीति, धर्म नीति, अलग अलग प्रकार के नैतिकता की बातें सिखा रहे हैं और सभी शांत सुन रहे हैं, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह के वचनों को सुन रहे हैं। तो ये स्तर भीष्म पितामह का भगवान ने स्थापित किया, इसलिए अर्जुन भगवान को याद दिला रहे हैं कि ये आपके भी पूजनीय हैं, ये केवल मेरे पूजनीय नहीं, आप इनकी पूजा किया करते थे, आप इनकी पूजा करने वाले हो आगे चलकर भी। तो इसलिए कहा गया है कि ये श्लोक अर्जुन ने सबसे प्रबल तर्क इस्तेमाल किया, और मधुसूदन और अरिसूदन ये दो शब्दों को भी जो अर्जुन इस्तेमाल किए हैं उसमें भी अर्जुन दूसरी तरीके से भगवान को कुछ याद दिला रहे हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान पर केंद्रित करते हुए अर्जुन ने यह श्लोक कहा है। अब अर्जुन जब कह रहे हैं कि भीष्म, द्रोण ये पूजनीय हैं, मेरे पूजनीय गुरुजन हैं, और आगे के श्लोक में अर्जुन, जो अगला श्लोक हम लेंगे पांचवा श्लोक, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, अर्जुन कहते हैं कि ये केवल गुरुजन नहीं, ये महान अनुभव वाले लोग हैं, महान अनुभव वाले लोग, महानुभाव ऐसे लोग हैं ये, कि केवल मेरे लिए नहीं, ये पूरी सृष्टि के लिए, विशेष रूप से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनको नहीं मारोगे तो निंदनीय तुम कहलाओगे। ये आप समझिए विरोधाभास, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम यदि भीष्म और द्रोण को नहीं मारोगे तो तुम निंदनीय कहलाओगे, और अर्जुन कहते हैं कि मैं यदि मारूंगा इन पूजनियों को तब मैं निंदनीय कहलाऊंगा। समझ में आ रहा आपको? तो अब कोई पूछ सकता है कौन पूजनीय है, कौन निंदनीय है, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना। तो हमें देखना है कि शास्त्र के अनुसार कौन सी वस्तु पूजनीय कब होती है, किस परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति पूजनीय या निंदनीय होती है, और कौन से व्यक्ति पूजनीय और निंदनीय होते हैं। क्योंकि एक ही वस्तु किसी दूसरे स्थान में, किसी दूसरे काल में पूजनीय हो सकती है, और वही वस्तु किसी दूसरे काल में, दूसरे स्थान में, दूसरी परिस्थिति में निंदनीय हो सकती वस्तु। उसी प्रकार से परिस्थिति भी पूजनीय और निंदनीय, और उसी प्रकार से व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी पूजनीय हो सकता है किसी एक समय, और वही व्यक्ति निंदनीय हो सकता है किसी दूसरे समय या किसी दूसरे स्थान में, किसी दूसरी परिस्थिति में। तो हम पहले इन तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति। तो यदि वस्तु को लिया जाए, अब देखिए हमारे जीवन में हम कितनी वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, रहने का जो मकान है वो भी एक वस्तु है, और हमारे घर में यदि लिस्ट निकाले तो कितनी वस्तुएं हैं हमारे इस्तेमाल करने के लिए, भरा हुआ है गोडाउन, कबर्ड, अलमारियां, कितनी सारी वस्तुएं हैं। और उनमें से बहुत सी वस्तुएं, हाँ, हम उन्हें पूजनीय मानते हैं ना, कई वस्तुएं हैं जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, इसलिए संभाल कर रखते हैं, तिजोरी में चप्पल नहीं रखते, नहीं रखते ना, तिजोरी में चप्पल नहीं रखी जाती, चप्पल शू स्टैंड, और शू स्टैंड पर हीरे जवाहरात नहीं रखते हैं। तो वस्तु है, परंतु वस्तु पूजनीय या जो भी निंदनीय जिस भी प्रकार का उसका स्वरूप होगा उस हिसाब से हम उससे व्यवहार करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए खाने की कोई वस्तु है, चावल, चावल, चावल जो है मान लीजिए हमारे शरीर के लिए वो पुष्टि देता है, पौष्टिक है, मान लीजिए चावल, ये सच बात है कि गलत बात है? हाँ, स्वस्थ शरीर के लिए ठीक है, अस्वस्थ शरीर के लिए चावल उसको नहीं खाना चाहिए? अच्छा, वो डायबिटिक अगर है, उसे डायबिटीज हुआ है तो डायबिटीज वालों को चावल नहीं खाने चाहिए? यहां पर एक और दूसरा मत है, हमारे बड़े कलंत्री प्रभु कहते हैं खाना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य। अच्छा ठीक है, तो यदि डॉक्टर की सलाह लें तो डॉक्टर कहेगा कि
नहीं कहता हूं, लेकिन खाता ही है।
डॉक्टर भी खाता है?
ओ, नहीं, अच्छा। कारण नहीं, कारण तो खाता है।
अच्छा अच्छा ठीक है, हम चावल का दूसरा उदाहरण लेते हैं। अच्छा, उसी चावल को यदि चार दिन बाद दिया जाए किसी को, पके हुए चावल को चार दिन बाद, बिना फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा हो, वही चावल शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा, बराबर, शरीर के लिए फिर वो हानिकारक हो जाएगा। तो वस्तु एक ही है, वही वस्तु जब ताजा होती है तो पूजनीय हो गई शरीर के लिए, और चार दिन बाद वही वस्तु जब सड़ गई तो निंदनीय है शरीर के लिए। आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम आगे चलकर और भी चर्चा करेंगे व्यक्तियों के विषय में, परंतु हम पहले वस्तु को लिए। तो अब यदि पत्थर को लें, पत्थर का उदाहरण, पत्थर पूजनीय है या निंदनीय है? कुत्ते के लिए कुत्ते को पूछो, कुत्ता भोंकता रहता है, जैसे वो कोई पत्थर उठाया भी नहीं, केवल ऐसे झुका नीचे, वो कुत्तों का और वो पत्थरों का 36 का आंकड़ा रहता है। अच्छा, यहां पर हम ये उदाहरण ले रहे हैं कि पत्थर, अब देखिए ये जो फर्श है, मंदिर का जो फर्श है, ये कौन सा पत्थर है? मार्बल, ये मार्बल है, और भगवान राधा कृष्ण का जो अर्च विग्रह होता है मंदिरों में वो किसका बना होता है? वो भी मार्बल। इसके ऊपर तो हम चलते हैं, परंतु उसको पूजते हैं। उसको तो बिना नहाए भी स्पर्श कोई नहीं कर सकता, यहां पर तो पैर रखा जा रहा है इस मार्बल के ऊपर। तो कैसे अंतर आ गया? मार्बल ही है, पत्थर ही है। जो नास्तिक लोग रहते हैं वो इसी प्रकार से ये तर्क रखते हैं, अरे इसके ऊपर तुम चलते हो और उस पत्थर को पूछते हो, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, लॉजिक नहीं लगा सकते, इसलिए तो पूजनी है। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, वो उदाहरण आगे लेते। पत्थर का समझ में आया आपको कि वस्तु एक ही है परंतु किसी क्रिया के द्वारा उस पत्थर को पूजनीय बनाया जाता है। जल, अब जल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O है ना, उसको यदि आप साइंटिफिक नाम उसका पूछें तो H2O, परंतु वही H2O जब भगवान के चरणों से निकलता है तो उसे कहते हैं गंगा। अब गंगा को यदि लेबोरेटरी में कोई ले जाए और उसका एलिमेंट्स देखे, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो क्या है? H2 है। म्युनिसिपैलिटी का भी H2 है और जो गंगोत्री से गंगा आ रही है वो भी H2 है। लेकिन कोई जब कोई व्यक्ति मर रहा है उसको गंगा जल देना है तो नल का पानी खोल के कोई देगा नहीं, म्युनिसिपैलिटी का क्लोरीन भरा हुआ। यहां तक बताया गया है कि गंगा जो गंगोत्री से शुरू होती है, गोमुख से जो गंगा शुरू होती है और जहां तक गंगा सागर बंगाल में जहां पर सागर से मिलती है, तब तक कितने सारे नाले गटर वो गंगा में मिलते हैं। वो गंगा में मिलने से पहले वो गटर नाले कहलाते हैं, परंतु गंगा में मिल जाने के बाद फिर वो सब गंगा ही कहलाते हैं। उसमें से कोई ये नहीं कहता कि अरे ये गटर है ये नाला है, नहीं, वो सब अब गंगा, शुद्ध गंगा वो कहलाते हैं। उसमें वो आध्यात्मिक शक्ति फिर भी बनी रहती है। तो जल पूजनीय बन जाता है कैसे? किसी क्रिया के द्वारा। क्रिया क्या है? भगवान के संबंध में। पत्थर भगवान के संबंध में आया, पत्थर पूजनीय हो गया। जल भगवान के संबंध में, जल पूजनीय। वृक्ष, हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, यहां तक कि तुलसी महारानी की जो छांव है, जो छाया है, उसके ऊपर भी कोई लांग कर नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे नियम है। जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि अश्वत्थ वृक्ष जो है, ये सारे वृक्षों की पूजा होती है, ये पूजनीय है। भगवान कहते हैं कि इन वृक्षों में मैं हूं प्रस्तुत। तो वृक्ष ये पूजनीय हो सकते हैं। अब जैसे देखिए, बहुत से वृक्ष हैं, रबड़ का वृक्ष है, कोई नीम का वृक्ष है, कितने सारे वृक्ष, कितने अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, परंतु तुलसी, तुलसी को तुलसी क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके तुल्य कोई नहीं, उनके तुल्य कोई नहीं, इसलिए वो तुलसी, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्नता देती हैं इसलिए। अच्छा, वृक्ष का ही उदाहरण हम लें तो वृक्ष से कागज बनता है ना? कागज किससे बनता है? वृक्ष से। और वही कागज का इस्तेमाल कर जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे भगवद गीता, श्रीमद भागवत इत्यादि, किन से बने हुए? पन्नों से बने हुए। परंतु वो भगवद गीता, अब वो भगवद गीता को पूजनीय लोग कर लेते हैं, उसे ऑल्टर पर रखते हैं, जैसे हमने ऑल्टर पर रखा है गीता, और उसे गंदे हाथों स्पर्श नहीं करते, नहा धोकर उसे स्पर्श करते हैं, उसे माला पहनाते हैं। भगवद गीता है क्या? भगवद गीता यदि कोई पूछे तो पन्ने, तो पन्ने पूजनीय हो गए। अभी वो पन्नों का यदि आप फिर से केमिकल कॉम्पोजिशन देखो तो वो पन्ने और न्यूज़पेपर के पन्ने कोई अंतर नहीं। हो सकता है एक ही प्रिंटिंग प्रेस से आते हैं, एक ही प्रिंटिंग प्रेस से भगवत गीता भी प्रिंट होकर आ रही है और न्यूज़पेपर भी प्रिंट होकर आ रहे हैं। और न्यूज़पेपर जाते रद्दी में, भगवत गीता ऑल्टर पर। क्यों? ठीक है, यदि भगवत गीता का उदाहरण इतना नहीं समझ में आता तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। न्यूज़पेपर वही पेपर का बना है और 500 रुपए का नोट। न्यूज़पेपर में भी गांधी जी दिखते हैं कभी कभी, और इस पेपर पर भी गांधी जी दिखते हैं, है ना? लेकिन इस पेपर पे जो गांधी जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, उसको कोई रद्दी में नहीं, अरे बहुत हो गया जैसे तो ले जा रद्दी में, ये घूमते रहते हैं भंगार वाले, रद्दी वाले, पेपर वाले, पुस्तक वाले, बोल बोल के। हाँ, उनको दे दो थोड़ा, 3-4 गड्डी। नहीं, वो पूजनीय सबसे बड़ा रुपया, वो पूजनीय हो गया, वो पेपर पूजनीय होगा। कैसे? जैसे ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद ये इस्तेमाल किया करते थे, ये अर्च विग्रह के संदर्भ में जब पूछा करते थे, अर्च विग्रह ये पत्थर वही पत्थर, क्या इसको उसको पूछते हो, उस पर चलते हो? तो प्रभुपाद ने कहा, जो तुम्हारे जेब में ये नोट है, ये नोट को तुम रद्दी में क्यों नहीं देते? ये भी पेपर है, लाओ इसे, इसको फाड़ दू तो देखो तुम्हारा भी ये सब कलेजा फट जाएगा, इतना सभी फाड़ दू तो पूरा कलेजा फट जाएगा। तो है पेपर, जैसे ये भी मार्बल वो भी मार्बल, है वो भी पेपर, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे स्टैंप मारकर उसे उसका वैल्यू प्रस्तुत कर दिया है, तो वो फिर साधारण पेपर नहीं है। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, इफ यू वॉन्ट टू डबल योर नोट्स जस्ट फोल्ड इट, हो जाएगा उससे डबल हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वृक्ष और वृक्ष से संबंधित यदि हम पन्नों को लें, उनको लें, स्थान, जैसे कि हम जिस स्थान में बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये मंदिर है, है ना? ये मंदिर है, हालांकि इसकी भी चार दीवारें हैं, ईंट पत्थर से ये भी बना हुआ है, हॉल बोल सकता है कोई व्यक्ति से, परंतु भगवान यहां पर केंद्र में आ जाते हैं तो ये हॉल नहीं रह गया, इसे मंदिर कहते हैं। और हो सकता है जैसे हमारे प्राण गौरांग प्रभु ने ये मंदिर बनाया और उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी और भी मकान बनाते हैं, कोई मैरिज हॉल बनाता है, कोई टॉयलेट बना दिया, उसी ईंट पत्थर से टॉयलेट भी बन जाता है, ईंट पत्थर से। अभी देखिए यहां पर भी बाहर टॉयलेट है, लेकिन यहां पर ये जो स्थान है, ये स्थान ये उससे अलग है, ये पूजनीय हो गया, क्योंकि भगवान के संदर्भ में। तो ये हम वस्तु के संदर्भ में ये समझ रहे हैं कि वस्तु पूजनीय होती है जब पूजनीय व्यक्ति के संबंध में वो वस्तु आती है, जैसे पत्थर, जल, वृक्ष, स्थान, और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, परंतु मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब परिस्थिति को लें तो परिस्थितियां भी देश काल पात्र के अनुसार पूजनीय या निंदनीय परिस्थिति हो सकती है। अब जैसे शुभ एवं अशुभ, सबसे पहले यदि इसका उदाहरण लें कि क्या शुभ है और क्या अशुभ। आपके घर में कोई चीजें ठीक नहीं चल रही, परिस्थिति ठीक नहीं, तो जो वास्तु कंसल्टेंट आजकल वो कहता है कि ये ठीक नहीं है, आपका ये किचन यहां पे नहीं होना चाहिए, ये अग्नेय या ईशान, ये सब अलग अलग, वो ऐसे ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते, लोगों को समझ में नहीं आता, बाप रे क्या बोला क्या है? ये कॉर्नर को चेंज करो, यहां से उठाओ, यहां पर इसको तोड़ो, यहां पर शीशा लगाओ और शीशे में देखो मत अपने आप को। तो जो किसी के घर में अशुभ चीजें चल रही है वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत शुभ है ना, नहीं तो उसका धंधा कैसे चलेगा। कोई बीमार है बेचारा, डॉक्टर के पास जाता है तो उसके जीवन में तो सब कुछ अशुभ चल रहा है ना, सारे पुर्जे सब ठीक नहीं चल रहे हैं, तो डॉक्टर के पुर्जे ठीक चलते रहे, क्षमा करें। तो कौन सी वस्तु, कौन सी परिस्थिति शुभ है, कौन सी परिस्थिति अशुभ है? जैसे यहां पर अर्जुन इस परिस्थिति को अशुभ मान रहे हैं, और भगवान के अनुसार भगवान को यह मौका मिला है कि अब धर्म की स्थापना में अर्जुन के द्वारा कर पाऊंगा, इतने सारे अधर्मी एक साथ मारे जाएंगे, तो भगवान के लिए तो बहुत शुभ स्थिति है ये, जो धर्म की स्थापना करने आते हैं भगवान। इसलिए हम जब परिस्थितियों की भी बात करते हैं, यहां पर जैसे यहां पर वांछित एवं अवांछित, कि कौन सी परिस्थिति हमारे लिए वांछित होती है और एक परिस्थिति जो हमारे लिए अवांछित होती है। परंतु कई बार अवांछित परिस्थिति वो पूजनीय हो सकती है और वांछित परिस्थिति निंदनीय हो सकती है। कोई उदाहरण आपकी तरफ से, शुभ अशुभ, वांछित अवांछित, सरल एवं विकट। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसका तापमान चढ़ा हुआ था, टेम्परेचर। तो डॉक्टर ने उसका टेम्परेचर चेक किया और डॉक्टर को पता लगा कि ये टेम्परेचर का कारण कुछ और बहुत मेजर इसको कुछ बीमारी हुई है। तो उसके तापमान के वजह से उसको जो जानलेवा बीमारी हुई वो डॉक्टर को पता लगी, और डॉक्टर ने फिर वो बुखार छोड़कर वो जो जानलेवा बीमारी है उसको ट्रीट करना शुरू किया। तो अब ये प्रश्न पूछा जाए कि वो जो बुखार चढ़ा वो वांछित था या अवांछित? यदि वो बुखार नहीं चढ़ता तो वो कभी डॉक्टर के पास आता नहीं, और डॉक्टर को पता कैसे लगता फिर कि इसे ये जानलेवा बीमारी है, जब तक कि वो जान नहीं ले लेती। आपको समझ में आ रहा है? तो अब ये बीमार व्यक्ति अपने बुखार को धन्यवाद दे रहा है। अब कोई सुने बुखार को धन्यवाद दे रहा, अरे बहुत अच्छा तुम बुखार आया, हम तो प्रार्थना करते हैं बुखार नहीं आना चाहिए ना। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, एक ठकुराइन थी, एक गांव की ठकुराइन, और ठकुराइन को बुखार चढ़ गया। तो वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने देखा कि ठकुराइन को बुखार है और ठकुराइन की जो नौकरानी है उसको भी बुखार है। तो दोनों का तापमान चेक किया तो नौकरानी का बुखार ज्यादा था, नौकरानी का 104 था, ठकुराइन का 102। तो ठकुराइन बोलती है इसका मेरे से ज्यादा कैसे हो सकता है, मेरा ज्यादा करो इससे, ये मेरी नौकरानी है, जो भी है इसका मेरे से कम होना चाहिए, बुखार भी कम होना चाहिए। तो स्वाइन फ्लू, अब वो स्वाइन फ्लू मुझे एक आर्टिकल किसी ने भेजा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए बहुत वांछित ये फ्लू था, कि भाई इतनी दवाइयों की बिक्री हुई उनके लिए बहुत वांछित, बेचारे जो मर रहे थे। तो वैसे ही परिस्थिति भी हमें देश काल पात्र के अनुसार देखनी होगी कि कौन सी परिस्थिति पूजनीय है, कौन सी परिस्थिति निंदनीय है। अब व्यक्ति यहां पर देखिए, अधम योनि का अर्थ है मनुष्य योनि से नीचे जो योनियां हैं, जैसे जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार की जो योनियां हैं उन्हें अधम योनि कहा गया है। तो अब अधम योनि कैसे पूजनीय हो सकती, कैसे निंदनीय हो सकती? अच्छा, गाय, गाय ये मनुष्य से उच्च योनि है या निचली योनि है? देश काल पात्र के अनुसार है ना। जैसे एक गुरुजी थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और गुरु बने और उनके कई शिष्य, तो शिष्यों को वो बता रहे हैं कि कैसे गो माता कितनी पूजनीय है और गो माता का गोमूत्र कैसे पूजनीय होता है, गोबर कितना पूजनीय होता है, सब कुछ गौ माता से जो भी संबंधित है वो कैसे पूजनीय होता है। और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रक्षा करने आते हैं गो ब्राह्मण हितायच, कि गौओं की और ब्राह्मणों की, स्वयं भी तो ब्राह्मण थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कैसे गौओं से ऊंचे हैं, तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपने कहा कि गो माता वो पूजनीय है और ब्राह्मण गो माता से ज्यादा पूजनीय है, तो आपने कहा कि गाय का गोबर पूजनीय है, तो वो कैलकुलेशन से क्या वो भी पूजनीय है? तो अच्छा, आप समझे नहीं आप लोग समझे ना कि, तो फिर अब यहां पर जब हम अधम योनि लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वो गायों के विषय में कहे हैं गोपालक, उनको नाम मिला है गोपाल, गौओं की रक्षा करने वाले। और वही भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक भागवत में कहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, नहीं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, उसमें भगवान कहते हैं स एव गोखर, कि जो गो और खर, खर का अर्थ है गधा और गो का अर्थ है गाय, जो गाय और गधे की बुद्धि वाला है वो समझ नहीं पाता कि कैसे जीवन का परम उद्देश्य स्थापित किया जाए। तो गाय वो पूजनीय कैसे हुई है? क्योंकि भगवान के संदर्भ में आए गए। अब जैसे भगवान अपने पगड़ी में या अपने मुकुट पर क्या कहते हैं, मोर मुकुट, मोर मुकुट बंसी वाले, तो मोर मुकुट धारण करते हैं, तो मोर वो पूजनीय हो गए क्योंकि उनके पंख भगवान अपने मुकुट पर धारण करते हैं। तो वैसे ही कोई भी योनि अधम, जैसे कि भगवान मत्स्य के रूप में आए, भगवान कूर्म के रूप में आए, भगवान अलग अलग प्रकार के प्राणियों के भी, एक पुराण में कहा गया है कि भगवान मच्छर की योनियों में भी अवतरित हुए, मच्छर की योनियों में भी अवतरित हुए। अब देखिए उनका भी उद्धार भगवान ने किया, तो भगवान किसी के भी, किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। अब अक्षम जाति, एक है अधम योनि और एक है अक्षम जाति। मनुष्य में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो कि वैदिक संस्कृति को पूर्ण रूपेण नहीं पकड़ पा सकती। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहां कहां प्रचार नहीं किया और अपने शिष्यों के द्वारा कहां कहां प्रचार नहीं करवाया। अफ्रीका, अफ्रीका में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भेजा। प्रभुपाद भी गए अफ्रीका में। एक घटना ऐसी हुई कि प्रभुपाद अफ्रीका में गए तो वहां पर तो अब आपने यदि अफ्रीकी लोगों को देखा होगा, वो भी वहां के जंगली जाति के कुछ। तो प्रभुपाद वहां पर जब गए तो अब प्रभुपाद कैसे समझाए भगवान कृष्ण कौन है। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान श्री कृष्ण काले हैं। तो सभी हंसने लगे एक दूसरे को, पहली बार कोई हमको ऐसे भगवान का रूप बता रहा है। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी तरह नहीं है, नॉट लाइक यू, वो श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं परंतु बहुत सुंदर है। तो उस विजिट में प्रभुपाद ने देखा कि प्रभुपाद सुबह उठे मंगल आरती जाने के लिए तो प्रभुपाद के कपड़े जो सुखाए हुए थे एक कपड़े नहीं दिख रहे कहीं। तो प्रभुपाद ने जो पिछले दिन के कुछ कपड़े थे वो एक कपड़े निकाल के पहने और देखे क्लास में जो बैठे तो उनके जो नए नए अभी शिष्य बने वो प्रभुपाद के कपड़े पहन के बैठे ऑडियंस में। तो प्रभुपाद को यहां से सिखाना पड़ा कि अपने गुरु के कपड़े चोरी करके नहीं पहनने चाहिए। एक प्रभुपाद के शिष्य वो भगवत गीता उन्होंने वहां पर भगवत गीता वितरण करने का निश्चय किया, कहां अफ्रीका में। तो वहां के जो जंगली जाति के सरदार, एक मतलब ट्राइबल पीपल जो बोलते हैं जिनको एबोरिजिनी एकदम जंगली जाति का उनका एक सरदार, वो आए इनके पास और कहे कि आपको हम लंच पे बुलाना चाहते हैं हमारे कबीले में। कबीला जानते, कबीला, हमारे कबीले में आपको लंच पे बुलाना चाहते। तो सोचिए पूरे अफ्रीकी जंगली जाति के सरदार इनको लंच पे बुला रहे। तो इन्होंने इनसे पूछा, इन्होंने पूछा आर यू कॉलिंग मी फॉर लंच और एम आई द लंच। मैं तो नहीं ना लंच। तो फिर भी हिम्मत करके वो गए, हिम्मत कर कर गए तो सब पूरा सब सब झिंगा लाला लोग और वो वहां पर उन्होंने वो जंगली जाति के अफ्रीकी वो सरदार उन्होंने इनको भगवत गीता दिखाई। भगवत गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता दिखाई और ये आश्चर्यचकित हो गए कि यहां तक कैसे गीता पहुंच गई। तो इन्होंने इनको पूछा, सरदार को पूछा तो वो कहे कि आप ये जैसे कोई एक ये पुस्तक वितरण करने आए थे कुछ साल पहले, तो मैंने तो कहा कि मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं, तो पूरे जंगली पढ़ू लिखूं क्या इसमें से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सोते समय आपके तकिए के नीचे रख दो, बस अपने आप ट्रांसफर होगा कुछ तो कुछ। तुछ। तो वो इतना विश्वास किए कि वो रोज वो भगवत गीता को अपने तकिए के नीचे रख के सोते, जो भी उनका उस हिसाब से तकिया जो भी हो। और वो जानते थे कि फिर ये जो इनका जो ये सब चार नियम पालन करते हैं इनको फिर बताया गया तो उनको जो भी जंगली जड़ी बूटियां या फिर फल ये वो सब कुछ जो दिखने में शाकाहारी वो सब उनको उस लंच में प्रस्तुत किया भक्त को। तो कोई यदि अक्षम जाति का भी है, जैसे कि एक श्लोक है रूप गोस्वामी द्वारा रचित, व्याधस्य का चरण ध्रुवस्य च वयो विद्याम गजेंद्रस्य का कुब्जायाम किमनो नामनो रूपम अधिकम सुदामनो किम तद्धनम। इस श्लोक में अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की एक लिस्ट निकाले हैं। मृगरारी, मृगरारी भी एक जंगली था, एक जंगली शिकारी मृगरारी, और उस मृगरारी को नारद मुनि की कृपा से वो शुद्ध वैष्णव बन गया। तो कोई अक्षम जाति का भी है तो भी पूजनीय बन जाता है यदि भगवान के संपर्क में आए। यहां तक कि गजेंद्र, गजेंद्र के विषय में कहा गया, गजेंद्र विद्याम च गजेंद्र से का, क्या विद्या गजेंद्र के पास थी? अरे वो तो एक हाथी अधम योनि का। वो गजेंद्र, ऐसी फिलॉसफी भागवत में यदि आप पढ़ो आठवें स्कंद में गजेंद्र द्वारा जो स्तुतियां हैं, ऐसी ऐसा तत्व ज्ञान गजेंद्र बोल रहे हैं और भगवत धाम प्राप्त किए। तो इस श्लोक में कहा गया है कि कुब्जा जो कि एक कुबड़ी स्त्री थी उसका उद्धार हुआ। ये सब भगवान के संदर्भ में जो आए अक्षम जाति के भी। और यदि कोई पापी जीव, जैसे फिर हम यदि मृगरारी का उदाहरण ले तो ऐसा पाप मृगरारी किया करता था, अधमरा कर जानवरों को छोड़ दिया करता था, उसमें आनंद लेता था वो, और ऐसे पापी जीव को नर्क से निकालकर, नर्क उसकी जो यातना होने वाली थी वहां से बचाकर नारद मुनि ने भगवत धाम पहुंचाया। अजामिल, अजामिल जिसका तो टिकट भी कट चुका था नर्क का, सब बुकिंग हो चुका था अजामिल का, और अब उसे बिठाकर ले जाने वाले थे यमदूत, तब विष्णुदूत पकड़ लिए और विष्णुदूत ने जो अजामिल को बचाया। तो पापी जीव, अक्षम जाति, अधम योनि, ये सब भी पूजनीय हो जाते हैं। इस्कॉन में एक भक्त का नाम है अजामिल दास। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो अजामिल ने पहले किया उसके दास हैं वो, जो अजामिल भगवत भक्ति भगवान का नाम लेकर जो शुद्ध हुए और बचाए गए वो अजामिल के दास। क्यों, क्यों पूजनीय हो गए? क्योंकि भगवान के नाम के संपर्क में आए। अब शास्त्रों के अनुसार यदि हम व्यक्तियों को ले, क्योंकि यहां पर अर्जुन दो व्यक्तियों को पूजनीय बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, तो पांच पूजनीय व्यक्ति शास्त्र में बताए गए हैं। कोई जानता है? स्त्री, वृद्ध पुरुष, ब्राह्मण, बालक और गाय। ये कहा गया है कि किसी भी समाज में यदि इन पांच व्यक्तियों की पूजा नहीं हो रही या पांच व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं हो रही तो वो समाज नर्क, नर्क का वो भागीदार बनेगा वो समाज। तो यहां पर अब ये पांच पूजनीय, तो यहां पर अर्जुन मानो भगवान को ये बता रहे हैं संकेत कर कि आप जानते हैं ना, आप स्वयं धर्म स्थापित करने वाले हैं, आप जानते हैं कि नहीं कि वृद्ध व्यक्तियों की पूजा की जानी चाहिए, और ये वृद्ध हैं कि नहीं भीष्म और द्रोण, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध दोनों हैं ये, और इनके वजह से जो स्त्रियां वो विधवा हो जाएंगी और वो सब कुछ जो तर्क अर्जुन ने प्रस्तुत किए, उनके बालक वर्ण संकर जो कुछ, और भीष्म पितामह वृद्ध और द्रोणाचार्य ब्राह्मण। तो यहां पर हम यदि ये देखें कि कुछ ऐसे उदाहरण हम यदि लें जिसमें देखा जाएगा कि देश काल पात्र के अनुसार, हां ये पांच जो पूजनीय हैं वो निंदनीय भी बन सकते हैं। ये जो पांच पूजनीय हैं वो निंदनीय भी बन सकते हैं। यदि स्त्री का उदाहरण लें तो सबसे पहले कैकेयी, कैकेयी और कैकेयी कौन से कंपनी को ज्वाइन की? मंथरा, मंथरा एंटरप्राइजेस। तो कैकेयी और मंथरा ने किया क्या कि हमको रामायण दी, उनके वजह से ये तो सब कुछ हुआ। अब कैकेयी के विषय में कहा गया है कि जब कैकेयी ने वो दो वर मांगे, और अच्छा कैकेयी का इतिहास ये बताया गया है कि महाराज दशरथ वो जब आज का जो अफगानिस्तान के राज वहां पर महाराज दशरथ लड़ने गए और लड़ते समय उनका जो सारथी था वो सारथी घायल हो गया। उस समय वहां के जो राजा उन्होंने अपनी बेटी ये कैकेयी अपनी बेटी को भेजा क्योंकि ये बहुत निपुण थी सारथ्य में रथ हांकने में बहुत निपुण थी कैकेयी तो कैकेयी को भेजा और कैकेयी उस समय इनका विवाह नहीं हुआ था दशरथ और कैकेयी का विवाह उस समय नहीं हुआ था। तो जब कैकेयी रथ हांक रही थी महाराज दशरथ का तो महाराज दशरथ कैकेयी के रथ हांकने को देखते देखते वो उनसे विवाह करने की इच्छा उनकी हो गई और जब उनकी इच्छा हुई से विवाह करने की तो इनके जो पिता राजा कैकेयी उनका नाम तो उनके जो पिता उन्होंने कहा एक शर्त पर इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा और उस समय महाराज दशरथ ने कह दिया हां ठीक है। और फिर जब कौशल्या नंदन राम जब पैदा हुए तब फिर और ये बात महाराज दशरथ ने कैकेयी को नहीं बताई थी कि मैंने ये प्रण तुम्हारे पिता को दिया था कैकेयी को ये बात पता नहीं थी ये मंथरा ने सब वो चुगली की चुगलखोर वो थी तो उसने सब चुगली की और फिर कैकेयी के मन में वो कीड़ा डाल दिया वायरस। अब देखिए पूरा अयोध्या कैकेयी को मारने पे उतारू जो कैकेयी ने किया कि अब अगले दिन प्रभु राम राज्याभिषेक इनका होने वाला है और ये कैकेयी अब ये क्या नाटक शुरू की है सब अचानक जो इतना प्रेम राम से करती थी। तो भरत को जब पता लगा तो भरत वो आए वो कहे कि कोई कहीं नहीं जाएगा इस कैकेयी को तो मैं मारता हूं। भरत वो कैकेयी लक्ष्मण भी और भरत दोनों तो दोनों कैकेयी को मार और मंथरा को भी उसको कौन छोड़ने वाला था। सबसे पहले तो जब पता लगा कि ये तो लक्ष्मण पूछे ये कौन है कौन ये मंथरा किसी को पता भी नहीं था इसका एड्रेस वगैरह कोई फोन नंबर किसी को पता नहीं कौन है ये मंथरा ऐसी केवल कैकेयी थोड़ा जानती थी मंथरा को। तो भरत और लक्ष्मण ये दोनों मंथरा और कैकेयी को खत्म करने वाले थे क्यों नहीं किए क्योंकि वो स्त्री थी इसलिए। भरत ने कहा क्योंकि कैकेयी तुम एक स्त्री हो और लक्ष्मण भी इसलिए मैं जान से नहीं मार सकता था। तो देखिए इतना क्रोध जो उनके अंदर यदि रामायण में हम पढ़े इन दोनों के अंदर जो क्रोध था कैकेयी के प्रति वो ऐसा क्रोध था कि वो क्रोध की अग्नि से ही कोई जलकर भस्म हो जाता परंतु फिर भी उनको नहीं कैकेयी को और मंथरा को नहीं मारा क्योंकि वो स्त्री की योनि में थी। परंतु एक और स्त्री को भगवान स्वयं मारे पुतना और रामचंद्र जी भी देखिए दोनों अवतारों में उन्होंने सबसे पहले राक्षसी का वध किया ताटका रामचंद्र जी ने उसको पहले सबसे पहले जो राक्षस को मारा वो स्त्री रामचंद्र जी ने और फिर से जब कृष्ण अवतार में आए तो ये पुतना आ गई तो भगवान सोचने लगे अरे पिछले अवतार में भी एक स्त्री आई थी अभी इसमें भी क्या चल रहा है इनका क्यों क्योंकि यहां पर भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करने हेतु और उससे ज्यादा भगवान पुतना का उद्धार किए तो भगवान मारे नहीं भगवान ने पूतना का प्रमोशन करवाया कहां गोलोक वृंदावन में। तो सोचिए तो भगवान ने इस हद तक उसको स्तर दिया पूजनीय स्तर दिया कि पूतना भगवान की माता बनी गोलोक वृंदावन में। तो ये उदाहरण दो उदाहरण हैं स्त्री के संदर्भ में। वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में सबसे पहला उदाहरण है धृतराष्ट्र। यदि धृतराष्ट्र को देखा जाए, अब सब कुछ जो कुछ हो रहा था ये जड़ धृतराष्ट्र, इसने सारी पट्टी पढ़ाई थी दुर्योधन को बचपन से कि तुम राजगद्दी संभालना, तुम ही राजा बनना, तुम ही, ये धृतराष्ट्र। और ये जिया, इतना जिया, सारे मर गए साम, फिर भी ये वो हस्तिनापुर को छोड़ा नहीं। और युद्ध के पश्चात ये बताया जाता है कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सारे पांडव सुबह उठते ही सबसे पहले धृतराष्ट्र के चरण छूते। और युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को रोज सांत्वना देते, पिताश्री बोलकर पुकारते, और रोज सांत्वना देते कि हां हमारे वजह से आपका दुर्योधन, प्यारा दुर्योधन, वो मारा गया, लेकिन आप हमें ही अपना पुत्र मानो। और पूजा, युधिष्ठिर महाराज रोज पूजा किया करते इस धृतराष्ट्र की। क्यों? एक ही कारण, वृद्ध, वयोवृद्ध होने की वजह से। अच्छा, दूसरा उदाहरण इसके संदर्भ में यह है भगदत्त। ये भगदत्त ये कौरवों के पक्ष में लड़ने वाला एक योद्धा था, और इतना वृद्ध था ये सबसे वृद्ध था ये भगदत्त। इसके पूरे बाल एकदम दूध की तरह सफेद हो चुके थे, और महाभारत में वर्णन है कि ये भगदत्त, इसकी आंखें भी नहीं खुल पाती थी, फिर भी उधर इसकी आंखें नहीं खुल पाती थी, इसकी पलकें हर समय बंद होती रहती। तो इसने किया क्या कि इसने अपने ललाट पर एक पट्टी बांध रखी थी और पलकों को खुला रखा था उसको बांध बांध कर, ताकि युद्ध कर सके। वो भी किससे? अर्जुन से। तो अर्जुन ने अब देखा कि इतना ये वृद्ध व्यक्ति, इसको देखो, मैं एक फूंक मारूंगा तो इधर गिर जाए। नहीं, खैर, वो भगदत्त बहुत शक्तिशाली योद्धा था वो। तो अर्जुन को जब भगवान ने आदेश दिया कि नहीं, इसको जब तक तुम नहीं मारोगे ये कर्ण नहीं आने वाला, कर्ण को मारना है, इसको पहले खत्म करो। तो अर्जुन ने फिर अपना बाण निकाला, और बाण निकालकर तो अर्जुन भगदत्त को कहते हैं, ये तुम्हारी जो तुमने बांध रखी है अपनी पलकों को, खुली रखी है इन आंखों को, तो आखिरी बार देख लो जो जो देखना है तुम्हें, अभी तुम मरने वाले, आंखें बंद होने वाली है तुम्हारी। तो ये भगदत्त का उदाहरण, जिसमें आगे के धर्म को स्थापित करने के लिए इस वृद्ध व्यक्ति को मारना आवश्यक था। ये गौर करने की बात है, क्योंकि यहां पर अर्जुन भीष्म और द्रोण को वयोवृद्ध कह रहे हैं, इसलिए पूजनीय है, इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि ये पूजनीय क्यों है, क्योंकि ये वयोवृद्ध है और ज्ञान वृद्ध भी साथ साथ। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति, उनकी पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि पहले जब ज्वाइंट फैमिली में लोग रहा करते थे, पहले किसी जमाने में, तो वहां पर जो वृद्ध व्यक्ति की तुलना लाइब्रेरी से की जाती थी। लाइब्रेरी का अर्थ क्या है? जब भी जैसे कोई विद्यार्थी को कुछ समस्या होती है, शंका होती, तो लाइब्रेरी जाता है ना, तो वैसे ही घर में यदि कुछ होता, झगड़े वगैरह, तो वो लाइब्रेरी खोलते कि आप 20 साल पहले इस स्थिति में आपने क्या किया। फिर वो जो लाइब्रेरी, वो अपने सलाह देती। तो वो वृद्ध व्यक्ति उस प्रकार से घर में रहा करते थे। मुझे याद है, मेरा एक मित्र था, गुड़गांव का रहने वाला, तो उसकी मंगनी हो चुकी थी, अब उसका विवाह ये जो महीना चल रहा है आजकल इसी महीने में, तो मुझे उसने बुलाया, मित्रों को बुलाया था, एक हफ्ता उसके घर में हम रहे। अब देखिए वो जो स्थिति होती है ना, किसी की मंगनी हो चुकी अब शादी नहीं हुई, तो बीच की जो स्थिति है ना, बहुत नया नया उल्लास रहता है, बहुत एक उमंग रहती है ना, पतंग कटने से पहले जो उमंग रहती है तो ये इसका नाम था शशांक, और इसका विवाह इसकी मंगेतर प्रिया, इसकी मंगेतर का नाम प्रिया था। तो अब हम वहां पर एक हफ्ते थे, तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि वो उस समय तो लैंडलाइन का जमाना, मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, तो लैंडलाइन पे जो मंगनी के बाद शादी से पहले की जो बातें होती ना, तो अब एक बार मैं सुन रहा था, तो ये हर टाइम फोन लगाता, बीच बीच में कभी भी समय मिलता यहां वहां से तो फोन लगाता, तो वो जो इसकी मंगेतर थी उसके दादाजी उठाते हर समय, उसके दादाजी फोन उठाते हर समय, और कई बार यदि उससे बात भी करने मिल जाती तो प्रश्न क्या पूछता, देखो कहां पर हो, अरे कहां पर रुक गया, घर पे है ना, लैंडलाइन पे तो फोन किया है। अब वो इतना डरा हुआ रहता, क्योंकि घर में भी पूरा ज्वाइंट फैमिली कोई सुन लेगा क्या चल रहा है ये सब, तो इसलिए कुछ तो पूछना है, तो कहां पर हो, तो उसको भी कुछ पूछना है, तो उसने एक बार पूछा क्या खाया आज, तो इसने बोल दिया खाना। तो एक हफ्ता मैंने देखा अक्सर ये जब फोन करता तो उसके दादाजी उठाते, और वो फोन करती तो इसके दादाजी उठाते, क्योंकि दादाजी तो रहते घर पे, ज्यादा कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं, तो फोन बजते ही वो उठाते पहले। तो ये जब फोन करता तो वो उसके दादाजी जब उठाते, तो अब दादाजी उठाए हैं तो दादाजी से बात तो करनी है ना, तो दादाजी से बात करते, दादाजी कैसी तबीयत, कैसी दादाजी, दादाजी बोलते कल तो पूछा था, नहीं नहीं आज कैसी, आज तबीयत कैसी, नहीं ठीक है, अच्छा दवाई ली कि नहीं, दवाई हाँ लूंगा, दवाई लो अभी जा, अभी अभी ले लो, ताकि वो दवाई लेने जाए तो और कोई फोन उठाए तब ये वो जैसे उसके दादाजी उठाते हैं तो उसकी तबीयत और फोन वोन और दवाई वगैरह के बारे में, वो फोन करती है तो इसके दादाजी उठाते, ये भी दादाजी कैसी तबीयत कैसी, दवाई ली कि नहीं दवाई। तो अब क्या हुआ क्या कि एक बार मैं सुन रहा था, ये उसके दादाजी की तबीयत पूछ रहा है और वो इसके दादाजी की पूछ रही है, तो इसके दादाजी ने बोला कह रहे भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, वो जो है वो मुझे दवाई पिलाती है और तुम उसके दादाजी को दवाई पिलाते हो, तुम अपने अपने दादाजी को दवाई क्यों नहीं पिलाते, फोन का बिल बढ़ेगा, फोन का खर्चा बचेगा, तुम अपने अपने दादाजी को दवाई पिलाओ ना, तुम उसके पिलाते हो दादाजी को, ये मेरे दादाजी को। खैर कम से कम दवाई तो पिला रहे थे फोन पे उतना तो था वयोवृद्ध व्यक्तियों को। मेरा एक मित्र, मैं उसका एक उदाहरण हर समय दिया करता हूं कि उसके पिताजी उसको एक बार बोले कि तुम इतना बड़ा, तुम बड़ा हो गया, तुम लैंगदा हो गया इतना बड़ा, लैंगदा मतलब इतना बड़ा हो गया, तो नौकरी धंधा कुछ करता नहीं, घर बैठे रोटी तोड़ता है खाली। तो ये उत्तर क्या देता अपने पिताजी को, तो मैंने एप्लीकेशन डाला था क्या, क्यों पैदा किया। ये एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, अरे पता है तुम्हारी उम्र में जब चाचा नेहरू तुम्हारी उम्र में वो अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, अपनी आमदनी खुद कमाते थे तुम्हारी उम्र में, तो पुत्र बोलता है, और पिताजी जब वो आपकी उम्र में थे ना तो प्रधानमंत्री बन चुके थे भारत के, पिताजी क्या बोले अब? तो यहां पर अर्जुन ये बोल रहे हैं कि ये पूजनीय मेरे भीष्म पितामह द्रोण, ये ऐसे पूजनीय हैं कि मैं वाग्बाण भी नहीं मार सकता इनके ऊपर। वाग्बाण आप समझते हैं, वचनों के बाण भी मैं नहीं मार सकता, ये बाण चलाने के लिए आप बोल रहे हो मुझे। तो इसलिए वृद्ध व्यक्ति, बालक, बालक का उदाहरण है श्रीमद् भागवत में वेण, महाराज अंग का ये पुत्र। ये वेण ऐसा बालक कि अपने सहपाठियों को खेलते खेलते मार डालता था, बचपन से राक्षसी। और इनके पिताजी भगवान के शुद्ध भक्त महाराज अंग, और ये वेण पूर्ण राक्षस बचपन से। परंतु फिर भी महाराज अंग ने और ब्राह्मणों ने उस राज्य के इसे नहीं कुछ किया, क्योंकि ये बालक था, कुछ नहीं किया। और इसके विपरीत महाभारत में कर्ण पुत्र वृषसेन का उदाहरण है कि ये वृषसेन ये अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार कर रहा था, और इसके प्रहार के वजह से अर्जुन ने जो बाण रखा था कर्ण के लिए, अर्जुन उस समय वो बाण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मुहूर्त जा रहा था जिसमें कर्ण के ऊपर बाण चलाना था, इसके वजह से। तब फिर भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, पर तो ये तो एक एक बालक ही है, माइनर जिसे हम बोलते हैं आजकल, वो केवल जैसे अभिमन्यु वैसे। तब भगवान ने कहा, नहीं, अभी धर्म की स्थापना करने के लिए इसे मारना जरूरी है, कर्ण के पुत्र को। तो इसलिए उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन ने वृषसेन की हत्या की। ब्राह्मण, ब्राह्मणों के संदर्भ में उदाहरण सबसे पहले है परशुराम जी का। परशुराम जी ने ललकारा प्रभु श्री राम को, रामायण में इसका वर्णन है। और प्रभु श्री राम ने युद्ध किया परशुराम जी से, परंतु उनका वध नहीं किया, ये कहते हुए कि आप पूजनीय ब्राह्मण है, आपका वध मैं नहीं कर सकता, ब्रह्म हत्या का पाप मुझ पर चढ़ेगा। और वही परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु, और भीष्म पितामह से परशुराम जी ने कहा विवाह करने के लिए, और भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, गुरु के सारे आदेशों का मैं पालन करूंगा, इस आदेश का नहीं। और शास्त्र में यह वर्णन है कि गुरु यदि शिष्य को आदेश दे तो शिष्य को हरेक गुरु का आदेश पालन करना चाहिए बिना प्रश्न के, ये एक आदेश को छोड़कर। तो भीष्म पितामह ने परशुराम जी का ये आदेश पालन नहीं किया, परशुराम जी ने युद्ध छेड़ दिया। तो भीष्म पितामह ने भी युद्ध किया अपने गुरु से, भी ब्राह्मण, और परास्त किया, परंतु मारा नहीं। तो ये परशुराम जी का उदाहरण। और इसके विपरीत उदाहरण है दुर्वासा मुनि। अब एक घटना इनकी ये है कि द्वारका में एक बार ये भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए दुर्वासा मुनि। और भगवान श्री कृष्ण, अब ये इन्हें ब्राह्मण भी जान रहे हैं और थोड़े वृद्ध भी हैं, तो देखिए कॉम्बिनेशन, एक तो वयोवृद्ध और ऊपर से ब्राह्मण। तो भगवान श्री कृष्ण इनकी पूजना आराधना करने लगे। तो अब दुर्वासा मुनि इन्होंने भगवान, और बहुत भेड़ंगा इनका इनकी दिनचर्या होती, कई बार इनको भूख लगती तो एक मिनट में यदि इनको भोजन नहीं दिया तो सब कुछ भस्म कर देते उधर, तो फेमस है ना दुर्वासा मुनि। तो कई बार ये 10,000 लोगों का एक साथ खा जाते, और कई बार 10,000 लोगों का बनाया हुआ है तो कुछ भी नहीं खाते, फास्टिंग उस दिन। तो बहुत मुश्किल है ऐसे अतिथियों का सत्कार करना। मान लीजिए कोई ऐसा आ जाए अभी कलयुग में। तो दुर्वास मुनि एक बार द्वारका में वो भगवान श्री कृष्ण से कहे
कि मुझे गरम खीर खानी है, तो गरम खीर तुरंत बनाई जाए, दुर्वास मुनि मांग रहे, तो गरम खीर बनाई गई। तो गरम खीर जब उनको दी गई तो उन्होंने एक चम्मच खीर खाई और फिर भगवान से कहते हैं अब इसको अपने शरीर पे लगाओ पूरा गरम खीर को। तो भगवान ने तुरंत उनकी जूठी खीर गरम ली और अपने पूरे शरीर पे लगा ली। और फिर दुर्वासा मुनि ने कहा कि अब मुझे अपने आश्रम में जाना है, रथ निकालो, ऐसे ही रथ आप चलाएंगे। तो भगवान रथ निकाले। अब दुर्वासा मुनि भगवान से क्या कहते हैं कि रथ के घोड़े निकालो और आप उनकी जगह पे जाओ। सोचिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई इस प्रकार की बातें बोल रहा है। भगवान घोड़ों को निकाले और खुद जोत गए वहां, और दुर्वासा मुनि वो लगाम चाबुक से भगवान को मार रहे हैं और जल्दी चलने के लिए बोल रहे हैं। और भगवान ने कण मात्र भी दुर्वासा मुनि को कोई अपनी तरफ से क्रोध दिखाना बिल्कुल नहीं। और दुर्वासा मुनि इसके पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे कि केवल आप ही हैं जो अपने क्रोध पर इतना संयम रख सकते हैं। वो भगवान की परीक्षा ले रहे थे। परंतु वही दुर्वास मुनि ने, इन्होंने जब अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, क्योंकि भगवान अपने ऊपर दुर्वास मुनि जो भी कहर ढा रहे थे वो अपने ऊपर उन्होंने लिया, परंतु अपने भक्त के ऊपर बिल्कुल उन्होंने सहन नहीं किया। तो ये दुर्वास मुनि को मारने के लिए भगवान, और भगवान ने अपना सुदर्शन दे दिया, उतारू हो गए, वही जिनकी पूजा भगवान ने एक बार की थी। अंतिम गाय, गाय का उदाहरण है। भगवान अपना नाम लिए गोपाल, जब पूतना का वध भगवान ने किया तो गौओं ने रक्षा की, गोबर, गौओं के गोबर ने, गोमूत्र ने, गोरज ने भगवान के पूरे शरीर की रक्षा की। तो भगवान ने उस दिन प्रण लिया कि मैं गौओं की रक्षा करूंगा। भगवान को इनाम मिला गोपाल, और वही भगवान ने आगे चलकर वत्सासुर का वध किया जो कि गोवत्स। क्यों? क्योंकि वो एक असुर था जो वत्स के रूप में आया था। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि भगवान ने एक जो गोपाल हैं वो वत्स का वध किए क्योंकि उसमें असुर था। इसलिए तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि ये जो पांच हैं पूजनीय हैं, कौन कौन? स्त्री, वृद्ध व्यक्ति, बालक, ब्राह्मण, गाय, ये पूजनीय हैं, परंतु धर्म की स्थापना के लिए देश काल पात्र के अनुसार प्रहार भी किया जा सकता है। अब अंतिम अर्जुन इस श्लोक में भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन भी बहुत सोच समझ के भगवान को अब मधुसूदन बोलें। सबसे पहले मधुसूदन का अर्थ यह हुआ कि मधु के दो अर्थ हैं। एक है एक असुर जिसका वध भगवान ने किया था जिसका नाम था मधु, तो इसलिए भगवान का नाम मिला मधुसूदन। और भगवान का एक नाम है माधव। माधव का अर्थ है कि भगवान की जो पीढ़ी, भगवान जो चंद्रवंश में पैदा हुए, इस चंद्रवंश में भगवान के 20 पीढ़ियों पहले एक राजा हुए, बहुत ही धार्मिक राजा जिनका नाम था मधु, जिसकी वजह से भगवान को यह नाम मिला माधव। तो अब अर्जुन भगवान को याद दिला रहे हैं कि आपको याद है आपको ये जो नाम मिला है ना माधव, ये आपको नाम मिला क्योंकि आपकी पीढ़ी में एक मधु नामक धार्मिक राजा हुए जिनकी पूजा आप भी करते हैं। तो आप जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हो, आप मुझे मेरे पूर्वज को मारने के लिए बोल रहे हो, ये कौन सी इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। तो मधुसूदन बोलकर मानो अर्जुन भगवान को यह बोल रहे हैं कि क्या आप वैसे मधुसूदन बनोगे, आपके जो पूर्वज हुए उनको मार कर ये नाम आपको यदि कोई बोले, आप जो मधु का वध करने वाले मधुसूदन नहीं। तो ये भगवान को वो याद दिला रहे हैं मधुसूदन बोलकर। अरिसूदन, अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो यहां पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपको अरिसूदन नाम से पुकारा जाता है क्योंकि आप हर समय आपके शत्रुओं का वध करते हो। कभी आपने ऐसे व्यक्तियों का वध नहीं किया जो आपके शत्रु नहीं, आपने शत्रुओं का वध किया है। तो मुझे ये जो मेरे इतने सगे संबंधी मेरे मित्र हैं सारे, मेरे ताऊ चाचा मेरे गुरुजन, इनको मारने के लिए आप क्यों मुझे प्रेरित कर रहे हो? इसलिए अर्जुन भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन नाम से पुकार रहे हैं। तो ये दो नाम से पुकारते हुए अर्जुन इन महत्वपूर्ण मुद्दों को इस श्लोक में भगवान के सामने प्रस्तुत किए हैं। उनका सबसे प्रबल तर्क पूजनीय और निंदनीय जिसकी चर्चा हमने की, और भगवान के ये दो नाम मधुसूदन एवं अरिसूदन। और अब अगले श्लोक में अर्जुन फिर से इन महानुभाव जो ये हैं गुरुजन इनके, इनके लिए इनके विषय में कह रहे हैं कि इनसे इनके रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा है भोक्तुम भिक्षम अपि हर लोके, इससे अच्छा यदि मैं भिक्षा मांगने के लिए अपना जीवन यापन करूं वो भी मुझे स्वीकार है। वो हम चर्चा करेंगे हमारे अगले बुधवार के कार्यक्रम। हरे कृष्ण। जैसे कि आपको पता होगा गीता जयंती के उपलक्ष में हमारे इस वर्ष के भगवद गीता पुस्तक वितरण मैराथन शुरू हो चुकी। 15 तारीख से हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू कर दिया है और हमारे आप लोग देख रहे होंगे कि ब्रह्मचारी काफी कम है मंदिर में, तो ब्रह्मचारी सब निकले हुए हैं भगवद गीता वितरण कर रहे हैं। और 15 तारीख को जो हमारा भगवद गीता मैराथन शुरू हुआ, आज क्या तारीख है, आज 2 तारीख है, तो इतने दिनों में कितने दिन हो गए, 17 दिनों में हमारे अब तक का स्कोर है महाबिग, अर्थात महाबिग का अर्थ है भगवद गीता कृष्णा बुक श्रीमद भागवतम इत्यादि, इसका स्कोर है 10,710। और हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवद गीता और इन ग्रंथों का लाभ मिले, तो ये स्कोर हम आपको इस